माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय भगवान कृष्ण का स्मरण श्लोक संख्या 3। सह कथम सेवया तस्य कालेन जरसं गता पृष्ठः वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादौ अनुस्मरन् स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् तु पादावनुस्मरन्
माताजी।
स कथम सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुः पादावनुस्मरन्
सः उद्धव कथम कैसे सेवया ऐसी सेवा से तस्य उसका कालेन समय के साथ जरसम अशक्तता को गत प्राप्त पृष्ठ पूछे जाने पर वार्ताम संदेश प्रतिब्रूयात उत्तर देने के लिए भर्तुहु भगवान के पादौ चरण कमलों का अनुस्मरण स्मरण करते हुए अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की यह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य, भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। उल्टे आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिक अधिक बढ़ती जाती है। क्योंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं मिलती। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते हुए थक जाता है, तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है, किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। निस्संदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया, तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षण भक्ति योगस्य आदि उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। तो अनुवाद दोहराइएगा। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रसंग ये चल रहा है कि विदुर जी और उद्धव जी की भेंट हुई थी और विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए उद्धव से कृष्ण के बारे में। जब दो शुद्ध भक्त मिलते हैं तो कृष्ण की ही चर्चा होती है और किसी अन्य विषय में चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्तों को रुचि ही नहीं होती है संसारी विषयों के की चर्चा करने के लिए। ये तो भक्तों की पहचान है, जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त वो हैं जो सदैव परस्पर आपस में कृष्ण की बातें करते हैं और इसी में रमण करते हैं। कृष्ण कथा के अलावा किसी अन्य विषय में रमण नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके प्राण धन हैं, कृष्ण ही उनके चित्त में समाये हुए हैं, इसलिए किसी अन्य विषय में रुचि बिल्कुल नहीं होती। तो जब उद्धव और विदुर दोनों ही शुद्ध भक्त मिलते हैं तो कृष्ण और कृष्ण भक्तों के अलावा भला वो क्या चर्चा करेंगे। तो विदुर जी ने उद्धव से अनेक प्रश्न किए थे कृष्ण के बारे में, कृष्ण के परिवार जो उनके भक्त हैं उनके बारे में, और सारे प्रश्न हो गए। उद्धव ने बड़े शांति से इन प्रश्नों को सुन लिया और अब जवाब देने जा रहे हैं। जब संवाद हुआ करते थे पहले, हम देखते हैं चाहे भगवद गीता हो या श्रीमद् भागवत हो या जितने पुराण उपनिषद आदि हों, हम देखते हैं कि सवाल करने वाला अनेक सवाल करता था। कभी कभी इतने सवाल हो जाते हैं 10, 15, 20, 25 सवाल कर लेते हैं एक के बाद एक, और वक्ता शांति से सुन लेते हैं और फिर वो शांति से बोलने लगते हैं और प्रश्न करने वाला शांति से सुनता है। समय उस समय, उस काल में समय सबके पास होता था, ऐसे नहीं कि आजकल घड़ी देख के हम लोग चलने पे बाध्य हो जाते हैं, यहां जाना है वहां जाना है ये करना है। तो आजकल जीवन की गति बहुत तेज हो गई है और मन की गति भी तेज हो गई है, इसलिए मन शांत नहीं रहता, अस्थिर रहता है, धैर्य धीरज नहीं रहता कि शांति से हम कुछ सुने। तो उद्धव ने सारे सवाल आराम से सुने, हालांकि उनको एक दृष्टि से आध्यात्मिक अस्थिरता महसूस हो रही थी मन में, क्योंकि कृष्ण का स्मरण विदुर जी ने जो दिलाया था इस समय, कृष्ण का स्मरण जो ही हुआ त्यों ही और विचलित हो गया उद्धव का मन। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त का विचलित होना एक साधारण संसारी व्यक्ति के मन के विचलित होने के बराबर नहीं है। उद्धव के मन में बेचैनी उत्पन्न होना यह शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो फिर धीरे धीरे से उद्धव ने अपने आप को संभाल लिया और बोलने का प्रयास किया। अभी वो बोलने की तैयारी में है, अपने आप को संभाल रहे हैं, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनकी स्थिति को समझते हुए अब यहां थोड़ा इतिहास दे रहे हैं उद्धव के बारे में। पिछले श्लोक में हमने कल देखा था कि कैसे उद्धव के बाल्यावस्था की चर्चा की गई थी, और क्योंकि बचपन से ही वो शुद्ध भक्त थे तो स्वाभाविक है कि वृद्धावस्था में भी वो शुद्ध भक्त ही रहेंगे। एक बार जो व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है तो कभी उसकी भक्ति तो नष्ट नहीं हो सकती। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कह रहे हैं, एक बार व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो या भक्ति करने लगता है तो उसकी भक्ति बढ़ती ही रहती है, और विशेष करके शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के बाद तो फिर पतन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं भी हुआ हो परंतु हृदय से अग्रसर हो रहा है अपने लक्ष्य की ओर, यदि उसका पतन कहीं किसी कारणवश हो भी जाता है, फिर भी दीर्घ काल तक वो उस पतित अवस्था में नहीं रहेगा। भगवान उसे निश्चय ही उसे खींच के अपने चरण कमलों में पुनः स्थित कर देंगे। यह है भक्ति की महिमा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी इस भागवत धर्म इस भक्ति मार्ग में आगे चलने से व्यक्ति सबसे बड़े भय से मुक्त हो सकता है और भक्ति से कभी दूर नहीं जा सकता। भले थोड़े समय के लिए वो कुछ अलग हो जाए लेकिन दूर नहीं जाएगा। यहां तक कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। नौवे अध्याय में वो बताते हैं कि यदि ऐसा कोई भक्त दुराचारी भी बन जाए, ऐसे कोई गलत काम भी कर ले, भयंकर कोई काम भी कर ले, यदि वो मेरे अनन्य भजन में रत रहता है और बहुत वो पछतावा करता है अपने बुरे कार्य के लिए और ऐसे बुरे कार्य को पुनः नहीं करता, तो फिर मैं उस व्यक्ति को, हे अर्जुन, साधु मानता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। शीघ्र ही, हे अर्जुन, वो पुनः अपने पूर्व स्थिति में स्थित हो जाएगा। तो सब जगह जाके जोर से घोषणा करो, हे अर्जुन, कि कृष्ण भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो उद्धव बचपन से ही शुद्ध भक्त थे। कल हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार से अन्य बच्चों की तरह वो नटखट नहीं थे, चंचल नहीं थे। बचपन से ही जो भी उनके खिलौने भी थे वो भी कृष्ण के संबंध में थे। तो जब वो बूढ़े हो गए तब उनकी भक्ति रुक नहीं गई बल्कि और भी बढ़ती गई। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, एक सबक है। हम सब बूढ़े होने वाले हैं, होने वाले हैं ना, कोई संशय तो नहीं है किसी को। जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं वो अपने जवानी की याद करते हैं कि जब मैं जवान था या जवान थी तो मैं ऐसे करता था, ऐसे करती थी। और जो जवान होता है वो सोचता है कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा नहीं। मृत्यु की बात तो दूर है कि मेरी जवानी हमेशा रहेगी, परंतु बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, और हर एक व्यक्ति को चाहिए कि उस अवस्था की तैयारी वो करे। तो बचपन से ही यदि किसी व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो जीवन भर भक्ति कर पाएगा। और संभव यह है कि अपने मृत्यु के समय वो भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम में लौट के चले जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन भर में भगवान की सेवा नहीं की है, भगवान का स्मरण कीर्तन आदि नहीं किया है, तो केवल अंतकाल में कैसे भगवान का स्मरण कर पाएगा। बचपन से जो अभ्यास लग जाता है उसी कार्य को आगे चल के करने में बहुत आसान हो जाता है। यदि अचानक बुढ़ापे में हम कोई नया कार्य शुरू कर देते हैं तो उस कार्य में परिपक्व होना बहुत मुश्किल होता है। यदि बचपन से ही भक्ति का अभ्यास लग जाए, भक्ति की आदत लग जाए, भगवान का स्मरण करने की आदत लग जाए, तो फिर बुढ़ापे में भी भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता रहेगा। इसके लिए कोई कृत्रिम रूप से प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जिस प्रकार से जब कोई टाइपराइटर चलाने के लिए सीखता है पहले तो एक एक उंगली से पहले कार्य करता है, एक एक उंगली से बटन दबाते रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसको अभ्यास होता है कई घंटों घंटों तक उसे अभ्यास करना पड़ता है, और ऐसे करते करते 2-4-6 महीने के बाद वो इतना निपुण हो जाता है उस कार्य में कि बिना देखे हुए भी बस उसकी उंगलियां चलती रहती हैं, आंखें बंद करे भी तो टाइप करता रहेगा और कोई भी गलती नहीं, और इतनी तेज गति से टाइपिंग करेगा कि देखने वाला भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे ये कर रहा है। और उस व्यक्ति को भी पता नहीं कि कैसे कर रहा है, बस वो चल रहा है, जो मानो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसकी उंगलियां चल रही हैं। ऐसे होता है ना अभ्यास करने से। अभ्यास करते रहने से परिपूर्णता की अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम जिस भक्ति को कर रहे हैं इस समय, इसे साधन भक्ति कहते हैं। साधन अर्थात अभ्यास की अवस्था, हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज के लिए? साध्य की प्राप्ति के लिए। साध्य क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में क्या होता है? व्यक्ति भगवान का अनुकूल भाव से प्रेममयी स्मरण करते रहता है, अलग से प्रयास नहीं करना होता है उसे। परिपूर्णता की अवस्था में भगवान को वो भूल नहीं सकता। तो ऐसे अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सबको तैयारी करनी है, तो भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो हमारी दिनचर्या है, जिस जो कि प्रभुपाद जी ने बताई है, इसको करते रहने से वो अभ्यास होते रहता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हम परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो कोई प्रश्न करे, हम तो बचपन में भक्ति नहीं कर पाए, जवानी में भी नहीं कर पाए, अब बुढ़ापे में भक्ति में आए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, महाराज खटवांग ने एक क्षण में अपने जीवन को सफल कर दिया। धृतराष्ट्र महाराज अपने बुढ़ापे में आए भक्ति के पथ पे, विदुर जी की कृपा से अपने जीवन को परिपूर्ण कर पाए। अजामिल ने भगवान का शरण ग्रहण किया मृत्यु के क्षण। तो यदि कोई देरी से आ भी जाए तो कोई संकोच नहीं, कोई नुकसान नहीं है उसमें, और व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी देरी से आया अब क्या होगा। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जवानी की अवस्था में भी भक्ति को प्राप्त करे परंतु अपने हृदय से भक्ति नहीं करे, तो बुढ़ापे में भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा, तो क्या लाभ। यदि कोई देरी से भी भक्ति के पथ में आए परंतु अपने हृदय से भगवान की सेवा करे तो निश्चित ही भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे। परंतु साधारण तौर से ही अवश्य है कि जिस व्यक्ति के लिए बचपन से ही अभ्यास हुआ है भगवान का स्मरण करने का, भगवान की सेवा करने का, उस व्यक्ति के लिए बुढ़ापे में भगवान का स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति जवान है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये थोड़ी उम्र है भगवान की भक्ति करने के लिए। जब कोई जवान व्यक्ति भक्ति करता है तो ऐसे कई टोकने वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार, तथा कथित रिश्तेदार, तथा कथित शुभचिंतक, वो आ ही जाते हैं, अरे ये थोड़ी उम्र है भक्ति करने की, बाद में कर लो, अब भोग कर लो, अब खूब कमा लो, अब भक्ति बाद में की जा सकती है। परंतु जब तक जवानी से हम अभ्यास नहीं करेंगे बुढ़ापे में कैसे स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत मुरझा हुआ फूल जो है भगवान को भेंट चढ़ाए, नहीं, जब शरीर साथ देता है तभी से प्रयत्न करना चाहिए। फिर बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं भी देगा, मन तो साथ देगा। बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता है, न हम भौतिक कार्य कर सकते हैं, न शरीर से हम आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। परंतु उद्धव के साथ जैसे हुआ, भले उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं, उनकी आत्मा तो वृद्ध नहीं हो गई, उनकी आत्मा तो जवान थी, इसलिए अपने हृदय से भगवान की सेवा बंद नहीं हुई उद्धव जी की, वो सेवा चलती रही। तो ये है हमारे लिए एक बहुत प्रेरणात्मक विषय। ऐसे कई उदाहरण हम इतिहास से देखते हैं। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो जगन्नाथपुरी में रहने के लिए चले गए तो हरिदास ठाकुर भी वहां आए थे, एक बार कभी कभी आते थे और फिर वहीं पर रहने लगे। वो जगन्नाथ मंदिर कभी नहीं जाते थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये तो केवल उन लोगों के लिए है जो शुद्ध हैं, मैं तो यवन हूं, यवन परिवार में जन्म मैंने लिया है, तो मैं वहां जाऊंगा तो अन्यों से स्पर्श करूंगा, सारे वातावरण को, लोगों को अशुद्ध कर दूंगा, और मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं जगन्नाथ का दर्शन करूं अंदर जाकर। हालांकि हरिदास ठाकुर सबसे ऊंचे स्तर के भक्त थे, फिर भी नम्रता के कारण वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे थे। तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पास में ही एक कुटिया में रहना शुरू कर दिया। तो वो भले जगन्नाथ को देखने न जाएं, लेकिन जगन्नाथ उनका दर्शन करने आते थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। प्रतिदिन दोपहर के समय महाप्रभु आया करते थे और उनसे वार्तालाप करके, उनको दर्शन दे के और उनका दर्शन लेके वो चले जाते थे। जब हरिदास ठाकुर बूढ़े हो गए तो वो अपने नियमों का पालन इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे थे। आप तो जानते हैं कि हरिदास ठाकुर का व्रत था, नियम था, कितने नाम लेने हैं उनको, 300,000 नाम, 300,000 नाम रोज जप किए बिना वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, और उनके अनेक अन्य नियम थे। परंतु जैसे शरीर उनका अशक्त होता गया, उनके लिए मुश्किल होता गया। गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, वो प्रतिदिन आकर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हरिदास ठाकुर को देते थे। हरिदास ठाकुर उस महाप्रसाद का सेवन करते और फिर अपनी आगे साधना कर लेते, अपना भजन। लेकिन एक बार हुआ ये कि गोविंद जब आए वहां पर तो हरिदास ठाकुर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुढ़ापा था। तो कविराज गोस्वामी इस प्रकार से चर्चा यहां पर वर्णन करते हैं, हम ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक पढ़ेंगे। वैसे हैं ये बंगाली में, लेकिन उच्चारण हम करेंगे हिंदी की तरह ताकि आप सब इन श्लोकों को आसानी से समझें।
देखे हरिदास ठाकुर कोरिया छे शयन, मंद मंद कोरिते छे संख्या संकीर्तन।
देखे हरिदास ठाकुर कोरिया छे शयन, तो गोविंद जब महाप्रसाद लेकर आए जगन्नाथ जी का, तो उन्होंने क्या देखा कि हरिदास ठाकुर अपने पीठ पे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, मंद मंद कोरिते छे संख्या संकीर्तन। मंद मंद मतलब बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे धीरे, हल्के से कोरिते छे मतलब वो कर रहे हैं संख्या संकीर्तन, अपना अपने माला के ऊपर नाम जप कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं कि अभी बहुत बूढ़े हो गए हैं और शरीर भी ठीक नहीं है, बीमारी है, शरीर में शक्ति कम रही, तो धीरे बहुत धीरे धीरे सी जैसे जैसे हो सके वैसे वो नाम जप करते जा रहे थे। तो ये अवस्था थी हरिदास ठाकुर की जबकि वहां पर गोविंद चले आए।
गोविंद कहे उठो आशी करह भोजन, हरिदास कहे आजी कोरी मूलंघन।
तो गोविंद ने कहा उठिए उठिए, अब थोड़ा महाप्रसाद लीजिए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ गया है, ले लीजिए। तो हरिदास ने क्या उत्तर दिया, आजी कोरिमु लंघन, तो आज हम उपवास करेंगे, हम प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। तो क्या कारण है उपवास करने के लिए, हरिदास ठाकुर आगे बता रहे हैं,
संख्या कीर्तन पूरे नहीं केमो तो खाइबो, महाप्रसाद अनियाच केमो तो पेक्षिबो।
वो कहते हैं संख्या कीर्तन पूरे नहीं, मेरा जो नियम है नाम जप करने का, कृष्ण नाम लेने का, वो पूर्ण नहीं हुआ, तो किस प्रकार से मैं प्रसाद को ले लूं, अब मेरा व्रत तो पूरा हुआ नहीं। और दूसरी ओर महाप्रसाद आनिया छो, और तुम महाप्रसाद लेकर आयो हो, तो इसकी उपेक्षा भी कैसे मैं कर सकता हूं, बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं, न मैं ले सकता हूं न मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूं।
तो फिर हरिदास ठाकुर ने कैसे रास्ता निकाला,
ऐतो बोली महाप्रसाद कोरिला वंदन, एकरंच लन तारक कोरिला भक्षण।
तो हरिदास ठाकुर ने महाप्रसाद के प्रति प्रार्थना की, स्तुति की, कोई स्तोत्र कहे, और फिर केवल एक कण लिया महाप्रसाद का, एक कण लेके अपने मुंह में डाल दिया, और इस प्रकार से उन्होंने महाप्रसाद का सम्मान भी किया और अपने व्रत का पालन भी किया।
आर दिन महाप्रभु तार ठानी आईला, सुष्ट हो हरिदास बोली तारे पूछिला।
आर दिन महाप्रभु तार ठानी आईला, तो महाप्रभु अगले दिन हरिदास ठाकुर के घर में आए, उनके कुटिया में आए।
सुस्थ हो तुम, स्वस्थ तो हो ना हरिदास,
बोली तारे पूछिला। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि हरिदास तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तो हरिदास ने क्या उत्तर दिया,
नमस्कार कोरिते हूं कोयला निवेदन, शरीर सुस्थ होय मोरा असुस्थ बुद्धि मन।
तो सबसे पहले हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को नमस्कार किया, प्रणाम किया, हालांकि उनकी अवस्था ये नहीं थी प्रणाम करने की, लेकिन किसी न किसी तरह से उन्होंने अपने शरीर को उठाकर नमस्कार किया और फिर कहा कि प्रभु मेरा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन बुद्धि और मन स्वस्थ नहीं है।
प्रभु कहे कौन व्याधि कहो तो निर्णय, तेह कहे संख्या कीर्तन न पूरय।
तो महाप्रभु ने पूछा कौन व्याधि कहो तो निर्णय, कुछ निश्चित रूप से बताओ तो तुम्हारी व्याधि क्या है, तुम्हारी बीमारी क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा संख्या कीर्तन न पुराए, मेरी बीमारी ये है कि मेरे जो नियमित रूप से जप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो ये मेरी बीमारी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमें जितने माला जप करने चाहिए वो यदि हम नहीं करते हैं दिन में,
तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें रोगी या बीमार मान लिया जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने 16 माला कम से कम ठीक से जप नहीं करता है हर रोज, वो आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है। भले शरीर जो भी कुछ तंदुरुस्त हो, हृष्ट पुष्ट हो, यदि माला ठीक से नहीं हो रहे हैं तो व्यक्ति बीमार कहलाता है। फिर महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे वृद्ध होइला संख्या अल्प करो, सिद्ध देह तुमी साधने आग्रह क्यानो करो। प्रभु कहे, महाप्रभु ने कहा, वृद्ध होइलो संख्या अल्प करो, तुम तो बूढ़े हो गए हो हरिदास, अब जप की संख्या कम कर दो तुम। सिद्ध देह तुम्हें, तुम तो सिद्ध पुरुष हो, मुक्त हो चुके हो, कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, साधने आग्रह कहने करो। इसलिए इतने आग्रह से, इतने कट्टरता से, इतने सख्ती से इन नियमों का पालन क्यों कर रहे हो? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम साध्य को प्राप्त कर चुके हो, तो इतना साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकनिस्तारिते तुमार अवतार, नामेर महिमा लोके करिल प्रचार। तो तुम्हारे इस अवतार में तुम नाम के द्वारा सबका उद्धार करने के लिए आए हो। नामेर महिमा लोके करिल प्रचार, अब तुमने पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त रूप से तुमने नाम का प्रचार किया है। तुम्हारा नाम है नामाचार्य, हरि नाम के आचार्य हो तुम। अपने आचरण से तुम सिखा रहे हो सबको कैसे नाम का आश्रय लेना चाहिए, और अब तुमने पर्याप्त रूप से प्रचार कर लिया है नाम का। एबे अल्प संख्या कोरी करो संकीर्तन, हरिदास कहे सुन मोरो सत्य निवेदन। तो महाप्रभु ने कहा, ठीक है, अब तुमने इतना सब कर लिया है, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली, प्रचार भी बहुत कर लिया, अब अपने नाम जप को कम करो, संख्या थोड़ी सी कम करो। फिर हरिदास ने कहा कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है। और आगे चल के उन्होंने अपना निवेदन प्रस्तुत किया महाप्रभु के सामने। क्या निवेदन था, वैसे वर्णन काफी है आगे। संक्षेप में हरिदास ठाकुर ने यह कहा कि मैं तो तुच्छ हूं, यवन हूं और आपके योग्य नहीं हूं, परंतु मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आपकी लीला समाप्त, यहां प्रकट लीला समाप्त करने के पहले, इससे पहले कि आप स्वधाम लौट के जाएं, मैं इस देह को त्यागना चाहता हूं और आपके सुंदर रूप का दर्शन करते हुए और मेरे मुख से कृष्ण चैतन्य इन शब्दों को निकालते हुए मैं प्राण को त्यागना चाहता हूं, तो मेरे इस इच्छा को आप पूर्ण करें। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि तुम कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा तो पूर्ण करते ही हैं। और फिर वहां से वो चले गए। और थोड़े दिन बाद हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण त्याग दिए चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में, उनका जीवन सफल हो गया। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कैसे वृद्ध अवस्था में भी भले शरीर साथ नहीं दे, लेकिन हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जैसे हरिदास ठाकुर की थी, तो ऐसे अवश्य भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे अन्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य रहे हैं जिनके उदाहरण से भी हम इसी बात को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी यहां अनेक वर्ष रहे, 40 वर्ष से अधिक वो ब्रज में रहे। कभी यहां वृंदावन में रहते थे तो कभी गोवर्धन में, कभी नंदगांव में, और बहुत तीव्रता से अपना भजन करते। कई वर्षों तक वो गोवर्धन के पास मानसी गंगा के तट पर चक्रेश्वर महादेव चक्रतीर्थ नाम के स्थान में वहां रहा करते थे और वहां अपना भजन करते थे। और वहां से वो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। वैसे गोवर्धन की परिक्रमा जो है वो करीब करीब 21 किलोमीटर की है, परंतु
सनातन गोस्वामी लंबी परिक्रमा किया करते थे, जिससे और अधिक लंबी थी और कई किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता था। प्रतिदिन वो किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, बुढ़ापा आ गया, शारीरिक दृष्टि से उनको बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी परिक्रमा करने के लिए, फिर भी किसी न किसी प्रकार से अपने आप को वो ले जाया करते थे परिक्रमा में, धीरे धीरे चल के वो जाते थे। तो एक दिन हुआ ये कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके उनके सामने आए और कहने लगे, बाबा तुम यह आराम से बैठो, बहुत थक गए हो परिक्रमा करते करते, मैं थोड़ी हवा दे देता हूं, अच्छी तरह से ताजी हवा दे देता हूं, बैठ जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने ग्वाल बाल के रूप में सनातन गोस्वामी की सेवा की और फिर कहा, बाबा यहां बैठो। और वो बच्चा गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गया और वहां से एक शिला उठा ले आया और ये दे दिया, देखो यहां पर ये शिला है, इसमें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, तो ये अपने पास रखो और इसकी परिक्रमा करो। ये गिरिराज जी की शिला है और इसमें और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। अब तो बूढ़े हो गए हो, अब पूरे गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाओगे, इसलिए इस शिला की परिक्रमा करो तो तुम्हारी गिरिराज की परिक्रमा हो जाएगी। तो फिर सनातन गोस्वामी ने गिरिराज शिला को स्वीकार तो किया, लेकिन जैसे ही देख रहे थे वो बच्चा अदृश्य हो गया। तो फिर बहुत संकोच हुआ, बहुत दुख हुआ सनातन गोस्वामी को कि अरे ये सुंदर बच्चा कहां चला गया। उनको बाद में पता चला कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण ही थे जो आए थे यहां उनको गिरिराज शिला देने के लिए। और ऐसा कहते हैं कि ये शिला जो है आज राधा दामोदर मंदिर में है, कोई कहते हैं कि ये जयपुर के राधा दामोदर में है, खैर जो भी हो। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की सहायता इस प्रकार से करते हैं वृद्धावस्था में। हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमारे सामने आएंगे जैसे सनातन गोस्वामी के सामने आए थे, परंतु हमारा भाव कैसे होना चाहिए इन कथाओं से हम जान सकते हैं। गदाधर पंडित के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। आप तो जानते हैं कि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। उन्होंने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया था। क्षेत्र संन्यास मतलब क्या होता है? जब कोई भक्त एक व्रत लेता है कि मैं इस तीर्थ स्थान को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो उसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं। तो गदाधर पंडित ने जगन्नाथपुरी के बाहर नहीं जाने का व्रत लिया था और सख्ती से पालन कर रहे थे। एक बार केवल महाप्रभु का पीछा करते करते वो बाहर चले गए, फिर से लौट के आ गए महाप्रभु के आदेश अनुसार। और वो टोटा गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। एक सुंदर गोपीनाथ जी की मूर्ति थी जिनको कि ढूंढ निकाले थे गदाधर पंडित एक बगीचे में। उड़िया भाषा में बगीचा यानी तोटा, तो क्योंकि बगीचे में वो कहीं पहाड़ में पाए गए थे, यहां बगीचे में उनकी सेवा हो रही थी, तो उनका नाम हो गया तोटा गोपीनाथ। और गदाधर पंडित वहां इनकी सेवा करते थे, पुजारी थे। ऐसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव यहां तोटा गोपीनाथ मंदिर में हुआ। कहते हैं कि वो अपने आप को उस विग्रह में मिला लिए, विलीन हो गए उस विग्रह में, गोपीनाथ जी के विग्रह में। भगवान जैसे चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं, जैसे चाहे वैसे अप्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए भले क्या नियम हो सकता है या क्या कठिन हो सकता है। तो खैर, गदाधर पंडित नित्य नियम से बड़े भक्ति भाव से गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, श्रृंगार करते थे, आरती आदि करते थे। लेकिन जब बूढ़े हो गए तो उनको अनुभव हुआ कि अब बार बार उठना बैठना और उठ के फिर श्रृंगार करना, ऊपर चढ़ के माला पहनाना, श्रृंगार करना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बैठे बैठे वो सोच रहे थे अब कैसे सेवा किया जाए। तो ऐसे कहा जाता है कि गोपीनाथ जी झुक गए और अभी बैठने की मुद्रा में हैं। कहे, ठीक है, तुम बूढ़े हो गए हो, खड़े होकर मेरी सेवा नहीं कर पा रहे हो तो मैं झुक जाता हूं। तो आज भी आप जाएंगे तो तोटा गोपीनाथ में आप देखेंगे कि गोपीनाथ जी झुके हुए बैठे हुए हैं। ऐसे कितने मूर्तियां आपने देखी जहां श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। जितने भी मंदिरों में हम जाते हैं हम देखते हैं कि श्री कृष्ण खड़े होकर अपने त्रिभंग ललित रूप में बांसुरी बजा रहे होते हैं, लेकिन यहां पर वो झुके हुए हैं बल्कि बैठे हुए हैं अपने वृद्ध भक्त गदाधर पंडित के ऊपर कृपा करने के लिए। उसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत बूढ़े हो गए थे जबकि वो यहां वृंदावन आए नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार, और यहां आकर बसे और उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं था। वृद्धावस्था इतनी हो गई थी कि वो लिख नहीं पा रहे थे और अपने भाषा में वो कहते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कापय कर मने किछु स्मरणे न हय, नाधिकीय नयने ना सुनिय श्रवणे तबु लिखि एई बड़ विस्मय। वो कहते हैं आमी वृद्ध जरा आतुर, बहुत वृद्ध हो गया हूं मैं। अपनी भाषा में अपनी ही अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। लिखिते कापय कर, तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं ठीक से। मुने किछु स्मरण न होए, मेरी जो स्मृति शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, कुछ याद नहीं आ रहा है। ना देखिया नयने, आंखों से देख नहीं पा रहा हूं बुढ़ापे के कारण। न सुनिए श्रवणे, न कानों से सुन पा रहा हूं। तो वो फिर भी लिखी ए बड़ो विस्मय, फिर भी ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लिख रहा हूं, ये सबसे बड़े विस्मय की बात है, आश्चर्य दिलाने वाली बात है। तो हालांकि कविराज गोस्वामी इतने बूढ़े हो गए थे, इतने अशक्त हो गए थे, उनकी इंद्रियां प्राय काम नहीं कर रही थीं, फिर भी चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ की रचना उन्होंने की। अपने कर कमलों से उन्होंने ये सारे श्लोक लिख दिए। ऐसे भक्ति करते रहे कविराज गोस्वामी। तो ऐसे भक्तों को निमित्त बनाते हैं भगवान, बुढ़ापे का विचार भगवान नहीं करते हैं, शरीर की अवस्था का विचार भगवान नहीं करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त को अपना निमित्त बना के चमत्कार कराते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी तो भगवान ने ऐसे ही किया। श्रील प्रभुपाद जी अंतिम क्षण तक श्रीमद भागवत की टीका कहते रहे अपने डिक्टाफोन मशीन में। उनका तिरुभाव यही हुआ इन कमरों में, और यहां पर अंत तक वो उस मशीन के अंदर बोलते गए जब तक उनके शरीर में ताकत थी बोलने के लिए, वो बोलते रहे। भले उनका शरीर कमजोर हो गया था लेकिन उनका मन तेज था, उनकी आत्मा जवान थी और भक्ति में बिल्कुल कम नहीं हुए, बल्कि उनकी भक्ति बढ़ती गई जैसा कि वो स्वयं यहां तात्पर्य में कह रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यदि हम अच्छी तरह से भक्ति करते रहेंगे तो बुढ़ापे में भगवान हमारा ख्याल रखेंगे, भगवान कृपा करेंगे और ऐसी अवस्था बनाएंगे कि हम उनका स्मरण कर पाएं। और यदि किसी का ऐसा सौभाग्य हो कि बचपन से ही उसे भगवान की भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे अनमोल अवसर को गंवाए नहीं, व्यर्थ समय अपना न बिताए, अच्छी तरह से हर एक क्षण का मूल्य समझ के भक्ति पथ में बड़े तीव्रता से लग जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न? हाँ जी, माइक वहां दीजिएगा, वहां पर।
कृष्ण प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि चाहे हम बचपन में या बुढ़ापे में भी अगर भक्ति हृदय से नहीं करते तो मतलब उसका मतलब सही वो नहीं है, फायदा नहीं है। तो किस प्रकार से हम ऐसी हृदय से भक्ति डेवलप कर सकते?
संग से, जैसा संग वैसा रंग। हम ऐसे लोगों के संग में रहेंगे जो सही तरह से सब कुछ कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन संग में रहते हुए भी हम नहीं करेंगे तो फिर भगवान ही अपने तरीके से कर लेंगे। फिर भक्ति से दूर नहीं ले जाएंगे, भले थोड़े समय के लिए कुछ तथाकथित कष्ट हो सकता है लेकिन फिर भी भगवान सही कर देंगे सब कुछ अंततः। इसलिए भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने आप ही निजी इच्छा से हमें शरण में जाना चाहिए भगवान का। हाँ जी, यहाँ माइक दीजिएगा। यहाँ पर
जो प्रभु जी का प्रश्न था बहुत सुंदर था कि हृदय से भक्ति करना सरल नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो साधन भक्ति होती है। साधन भक्ति का मतलब होता है कि प्रयत्न करके भक्ति करना। तो ये साधन भक्ति ही धीरे धीरे स्वाभाविक बनती है। ये कहना ठीक नहीं है कि अगर हमारी भक्ति हृदय से नहीं हो रही है तो वो साधन भक्ति है, उसका लाभ हमें हो रहा है। वो साधन भक्ति ही स्वाभाविक भक्ति बनेगी और वो ही जाकर के आगे शुद्ध भक्ति बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हरे कृष्ण।
बिल्कुल, लेकिन जितना हृदय से हम साधन भक्ति करेंगे उतनी तेजी से हमारी प्रगति होगी। यदि हम कुछ हमारे अंदर कुछ संकोच है भक्ति करने में, कोई हिचकिचाहट है, कोई बीच में इधर उधर बीच में चले जाते हैं सीधे पथ में रहने के बजाय, तो उतनी देरी होगी। जाएंगे तो सही, पहुंचेंगे एक न एक दिन, भले इस जन्म में हो या किसी आने वाले जन्म में हो, परंतु हृदय से करेंगे तो फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, माइक यहां दे दी।
टोटा गोपीनाथ नाम किस लिए हुआ?
टोटा मतलब बगीचा, तो क्योंकि वो बगीचे में है गोपीनाथ जी, इसलिए वो टोटा गोपीनाथ हो गया।
अच्छा, तो आपको हुआ था
ऐसे कहते हैं कि उनका अप्राकट्य जो है वो गोपीनाथ मूर्ति में हुआ था, ऐसे माना जाता है। हाँ, पीछे एक आखिरी प्रश्न।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी। विभीषण किसके संग करके उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ था?
तो हम विभीषण की तरह बनना चाहते हैं? माया को चेतावनी नहीं देनी चाहिए कि मैं अभक्तों के बीच में रह के भी मैं भक्त हो सकता हूं। भले विभीषण कर पाए, प्रहलाद भी कर पाए, लेकिन हम तो विभीषण नहीं हैं, नहीं हम प्रहलाद हैं। और ये जानना चाहिए कि जब तक विभीषण के अंदर भी कोई पूर्व जन्म की स्वीकृति नहीं होती, नहीं कर पाते।
एक्चुअली वही उनका जो बैकग्राउंड क्या था, मतलब
अभी पूर्व जन्म में वो क्या थे ये तो हम नहीं जानते विभीषण, लेकिन अवश्य कोई स्वीकृति थी अन्यथा वो नहीं आ पाते। प्रहलाद महाराज के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने मां के गर्भ में थे
तो नारद मुनि से श्रीमद् भागवत उन्होंने सुना था, तो नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ उनको। कयाधु जो प्रहलाद महाराज की माता थी वो तो भागवत भूल गई, लेकिन प्रहलाद ने याद रखा, क्योंकि बचपन की अवस्था में स्मृति शक्ति बहुत तेज होती है, तो वो याद रख पाए। उन्होंने संग ग्रहण किया नारद मुनि का। तो विभीषण तो पहले से ही पुण्यवान थे। हमें याद रखना है कि रावण भी एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो वो ब्राह्मण थे। उनके पिताजी का नाम था विश्रवा, माता का नाम था केशिनी, परंतु किसी न किसी तरह से दुष्ट हो गया। कुंभकर्ण भी और बढ़ के दोनों, लेकिन विभीषण एक अच्छा निकला, और शूर्पणखा चार थे, उनमें से एक अच्छा निकला, बाकी सब खोटे सिक्के। एक अच्छे निकले विभीषण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।